शाम का वक्त था। ईशान से बात करने के बाद कशिश काफी देर तक रोती रही थी, फिर खुद को समझा बुझाकर शांत किया और अपना मन बहलाने लगी। दूसरे तरफ कशिश के यूं अचानक बिना कुछ कहे फोन काटने से ईशान परेशान हो गया था। उसने कई बार कशिश को फोन लगाया था, पर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था। उससे दोबारा बात न होने की वजह से ईशान का दिल घबराने लगा था, अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने इंतजार की घड़ियों को काटा था और आज जल्दी दुकान बंद करके कशिश को लेने निकल गया था। अभिषेक के घर पहुंचा तो घर पर दोनों ही मर्द नहीं थे। शिखा टीवी देख रही थी। ईशान के आने पर वो चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी और माधुरी जी उसके साथ बैठी बातचीत करते हुए घर में सबके हालचाल पूछने लगी। उनसे बात करते हुए ईशान की बेचैन निगाहें यहाँ वहाँ भटकते हुए किसी खास की तलाश कर रही थीं, पर वो तो जैसे अमावस का चांद बने बादलों की ओट में छुपी बैठी थीं और अपनी एक झलक तक दिखाने को तैयार नहीं थीं। कुछ देर ईशान ने उसका इंतजार किया, पर जब उसे कशिश कहीं नज़र नहीं आई तो उसका सब्र जवाब दे गया और उसके लबों ने उसके दिल में उठते सवाल को पूछ लिया। आंटी, कशिश कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही? कशिश तो अपने कमरे में है, उनकी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्हीं से बात कर रही थी। हम अभी बुला देते हैं उन्हें, उन्होंने सौमिता से जवाब दिया और कशिश को बुलाने को उठी ही थीं कि कुछ सोचते हुए ठहर गईं और ईशान को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आप खुद जाकर मिल लीजिए, वहाँ एकांत में ठीक से बात भी कर लेंगे। ईशान उनकी बात सुनकर जरा झेप गया, पर फिर सर हिलाते हुए उनके बताए कमरे की तरफ चला गया। माधुरी जी उसे कशिश की ओर कदम बढ़ाते देखकर मुस्कुरा दीं। ईशान ने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर पलंग पर पैर पसारे बैठी कशिश ने चौंकते हुए नजरें दरवाजे की ओर घुमाईं। ईशान को अचानक यहाँ देखकर पहले तो वो चौंक गई, पर फिर उसे सब बातें याद आ गईं और उसका मूड बिगड़ गया। उसने ईशान को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर लगा दिया। ये देखकर ईशान की आंखें गहरी हो गईं और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। उसने दरवाज़ा बंद किया और कशिश के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ में फ़ोन लेकर बैठी हो, फिर भी मेरे कॉल्स नज़र नहीं आए? जो न कॉल रिसीव किया और ना ही खुद फ़ोन किया? सुबह से उसकी चिंता फिक्र में घोला जा रहा था, अब जब कशिश को बेपरवाही से फ़ोन चलाते देखा तो फिक्र गुस्सा बनकर सामने आने लगी। पर कशिश पर अब भी कुछ खास असर नहीं हुआ। उसने निगाहें उसकी ओर उठाईं और बेहद लापरवाही से जवाब दिया, नज़र तो सब आया पर बात करने का मन नहीं किया, इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया। और बात करने का मन क्यों नहीं किया तुम्हारा? बात करते करते बीच में फ़ोन क्यों काटा तुमने? ईशान भौहें चढ़ाते गंभीरता से उसे देखने लगा। कशिश का दिल तो किया कि मुंह पर बोल दे कि और सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर दिल की बात दिल में दफना गई। जब सामने वाले को उसके जज्बातों की कद्र ही नहीं तो क्यों उसे अपनी भावनाओं से रूबरू करवाकर खुद को जलील करे? इससे तो झूठ भला, सो उसने भी झूठ कहा। आपने जिस काम के लिए फ़ोन किया था वो हो गया था, तो बात करने की और ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे। ईशान कुछ पल असमंजस भरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचता रहा कि आखिर कशिश कहना क्या चाहती है, पर उसकी बात का मतलब ना समझ सका। उसने सर झटका और नज़रें कशिश के चेहरे से नीचे भिस लीं। हमेशा सूट साड़ी और कुर्ते में रहने वाली कशिश आज नीचे से प्लाजो और ऊपर से टॉप पहने, मांग में नाम मात्र का सिंदूर जो दूर से नज़र भी ना आए, न माथे पर बिंदी, न होठों पर लाली, न कोई साज श्रृंगार, कलाइयों में भी दिखावे के लिए दो दो चूड़ियाँ डाली हुई थीं, पैरों से पायल भी नदारत थी, बालों को बेतरतीबी से लपेटकर जुड़े की शक्ल दिए बिखरी हुई हालत में पैर पसारे बैठी थी। और दिनों से कितनी अलग लग रही थी वो, और उस मासूम से चेहरे पर बिखरी नाराजगी एक अलग रूप दे रही थी उसे। ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी निगाहों से देखा, फिर भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? कहा था ना मैंने कि शाम को आऊंगा तुम्हें लेने, पर मैंने तो नहीं कहा था कि मैं जाऊंगी ही। कशिश का लापरवाही भरा जवाब सुनकर ईशान चौंक गया और सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा, क्या मतलब हुआ इस बात का? तुमने कहा था कि काका काकी से पूछूं और उनकी इजाज़त लेकर ही मैं आया हूं तुम्हें वापस ले जाने, पर अब मैंने अपना मन बदल दिया, मैं कुछ दिन और यहां रहना चाहती हूं, इसलिए आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। कशिश ने गंभीरता से जवाब दिया, जिसे सुनकर ईशान की आंखें गहरी हो गई, क्यों नहीं जाऊंगी वापस? इतने दिन रह तो ली, मन करे तो दोबारा आ जाना, पर अभी तो तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा। ईशान ने जैसे फैसला सुनाया था, पर सामने कोई आम लड़की नहीं, कशिश थी, जो सिर्फ अपने मन की सुनती थी। ईशान का फैसला सुनकर उसने कुछ पलों से देखा, फिर उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपको मेरी याद आई, पर जवाब में मुझे सिर्फ खामोशी मिली, और उस खामोशी का मतलब बहुत खूब समझती हूँ मैं। जानती हूँ कि आपको मेरी रत्ती भर भी याद नहीं आई होगी, आएगी भी क्यों, आखिर मैं लगती ही क्या हूँ आपकी? आपको तो मेरे चले आने से बड़ा सुकून मिला होगा, आखिर जान खाने वाली जो आपकी ज़िंदगी और घर से चली गई थी, कशिश नाम की अनचाही मुसीबत आपके सर से उतर गई, आपके कमरे में ज़बरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाली इस छल्ली लड़की से पीछा छूट गया आपका, आप तो बड़े खुश रहे होंगे, फिर भला आप क्यों याद करेंगे मुझे? पर जब इतने दिनों में आपको एक बार मेरी याद नहीं आई, आपने एक बार भी फोन करके मेरा हालचाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं की, जब मेरी गैर मौजूदगी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो अब क्यों आए हैं मुझे लेने? जब इतने दिनों आपको याद नहीं आई कि आपकी पत्नी यहाँ पड़ी है, तो अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि मुझे लेने चले आए?